आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज केरलम और तमिलनाडु में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे जिनकी लागत 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को उनके ओहदे से हटाए जाने से मुतालिक अपोजिशन के करारदाद पर आज मुबाहसा दोबारा शुरू होगा। आबनाए हुरमुज से तिजारती जहाजों के गुजरने में रुकावट आ गई है। मगरबी एशिया की जंग का ये दूसरा हफ्ता है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया जंग के सिलसिले में ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराकी से बातचीत की है। और FIH खवातीन हॉकी के 2026 के आलमी कप के क्वालिफायर्स में फाइनल पूल बी के तहत भारत का मुकाबला आज वेल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज केरलम और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म केरलम के इरनाकुलम में आज दोपहर तकरीबन 10,800 करोड़ रुपए लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। वहीं वज़ीर-ए-आज़म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 5,650 करोड़ रुपए लागत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स पेट्रोलियम और कुदरती गैस, बुनियादी ढांचे, देही कनेक्टिविटी और शाहराहों की तरक्की जैसे कलीदी शोबों का अहाता करते हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म 5 नई ट्रेन खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और तकरीब से खिताब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जो ट्रेन खिदमात शुरू करेंगे उनमें दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। नगरकुल चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस जनूबी तमिलनाडु और तेलंगाना के दरमियान कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, जबकि ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों के लिए कारामद साबित होगी। पोडानूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस जनूबी भारत और मशरकी भारत के मादनियाती और सनती पट्टी के दरमियान रेल राब्तों को मुस्तहकम बनाएगी। इसके अलावा रामेश्वरम मंगलुरु एक्सप्रेस, तिरुवनवेली मंगलुरु एक्सप्रेस और मयिलादुतुरई तिरुवर कराईकुड्डू पैसेंजर जैसी तीन ट्रेन का भी आज आगाज किया जाएगा। इन ट्रेन खिदमात से न सिर्फ खित्ते में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा बल्कि इलाकाई इक्तसादी तरक्की में भी मदद मिलेगी। कोयम्बटूर से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाए जाने के करारदाद पर आज भी बहस जारी रहेगी। इससे पहले कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने गुज़िश्ता रोज ऐवान में यह करारदाद पेश की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन लीडर और हिज़्बे इख्तिलाफ़ के दूसरे रहनुमाओं को ऐवान में अपनी बात रखने की इजाज़त नहीं दी और अपोजिशन की ख़वातीन अराकीन पार्लियामेंट पर गैर ज़रूरी इल्जाम आयद किए। डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि जनाब बिरला गैर जानबदारी बरकरार रखने में नाकाम रहे, जो ऐवान में सभी का एतमाद हासिल करने के लिए ज़रूरी है। इस दौरान करारदाद की मुखालफत करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि स्पीकर ओम बिरला ने गैर जानबदाराना अंदाज में ऐवान की कार्रवाई चलाई है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने सिर्फ अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए यह करारदाद पेश की है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और LJP रामविलास के चिराग पासवान ने करारदाद की मुखालफत की और ऐवान की कार्रवाई में रखना डालने पर अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। इससे पहले कांग्रेस के गौरव गोगोई ने बहस का आगाज किया। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की तकरीर के दौरान बार बार रुकावट पैदा की। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK के अराकीन पार्लियामेंट ने करारदाद की हिमायत की। बहस बेनतीजा रही। इस दौरान राज्यसभा में देही तरक्यात की वजारत के कामकाज पर आज मजीद मुबाहसा होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुए काबिनी इजलास में जल जीवन मिशन को तकरीबन 8,70,000 करोड़ रुपए की इजाफी तखमीना जाती लागत के साथ दिसंबर 2028 तक तौसी देने को मंजूरी दी गई है। इस बारे में नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तेलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि काबीना ने जल जीवन मिशन के निफाज के बुनियादी ढांचे से लेकर खिदमात फराहमी तक उसकी तश्कील नौ और तरतीब नौ से मुतालिक जल शक्ति की वजारत की तजवीज़ को मंजूरी दी है।
जल जीवन मिशन का 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ। 1.0 वर्जन इतना महत्वाकांक्षी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल से जल। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, वाटर सोर्स सोसाइटी को जितनी डिफरेंट जो कमिटीज बनी है, विलेज की कमिटी, ग्राम सभा की कमिटी, पंचायत की कमिटी, इन सबको इन्वॉल्व करना, एक तरीके से अब इसको सस्टेनेबल बनाने का टाइम आया।
हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि मुल्क में घरेलू सार्फिन के लिए तवानाई की कोई कमी नहीं है और घबराने की कोई वजह नहीं है। हुकूमत ने कहा है कि वो मुल्क के घरेलू सार्फिन को किफ़ायती तवानाई की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सोशल मीडिया पोस्ट में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की तवानाई के दरामदात मुख्तलिफ ज़राए और रास्तों से जारी हैं। इस दौरान तेल कंपनियों ने मुल्क में LPG की पैदावार में इजाफा कर दिया है। आंध्र प्रदेश के खुराक और शहरी फराहमी के वजीर एन मनोहर ने कहा है कि रियासत में LPG की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने सप्लाई मामलों पर आवाम से न घबराने की अपील की। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत भर में घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए खातिर खा जखीरा मौजूद है। आलमी कशीदगी और किल्लत से मुतालिक कयास आरइयों के दरमियान वजीर मौसूफ ने पीर के रोज़ सीनियर अफसरान के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए LPG सप्लाई सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट कलेक्टरों को हिदायत दी कि वो निगरानी में इजाफा करें और काला बाजार में LPG मुंतकली की रोकथाम करें। निगरानी की खसूसी टीमें सप्लाई चेन पर नजर रखेंगी और कीमतों में गैरकानूनी इजाफे और अफवाहों पर कार्रवाई करेगी। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि गैर रिवायती वसायल से हासिल होने वाली बिजली सलाहियत में पिछली दहाई के दौरान खातिरखा इजाफा हुआ है। पहले यह सलाहियत 81 GW थी, जो अब तकरीबन 275 GW हो गई है। कल नई दिल्ली में ज़िरात और काबिल तजदीद तवानाई से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस एग्रो आरी समिट से खिताब करते हुए जनाब जोशी ने कहा कि शमसी सिंचाई में यह सलाहियत है कि वह भारत के ज़रई और तवानाई के शोबों को यकसर तब्दील कर दे। मगरबी एशिया जंग का ये दूसरा हफ्ता है। आबनाए हुरमुज़ से गुजरने वाले तेल के तजारती जहाज़ों में रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से इनकी नकलो हरकत 80% कम हो गई है। फिलहाल 150 टैंकर्स आबनाए हुरमुज़ के बाहर खुले समंदर में लंगर अंदाज हैं, जिनमें तकरीबन 16 अरब लीटर तेल है। खबरों के मुताबिक आबनाए हुरमुज़ के पास कम से कम 10 तजारती जहाज जंगी हथियारों या ड्रोन हमलों की वजह से फंसे हुए हैं, जबकि खलीज फारस में GPS निज़ाम ठप हो गया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने एक इत्तेहाद की तश्कील का ऐलान किया है, जिसका मकसद इस आबी गुजरगाह में तजारती जहाज़ों की हिफाजत करना है। उन्होंने इस मिशन को पूरी तरह दिफाई नौयत का मिशन करार दिया और कहा कि इससे ऑपरेशन एगेनोर की फौरी तौसी होगी, जो खित्ते में यूरोप की क़यादत वाला मौजूदा समंदरी सिक्योरिटी मिशन है। फ्रांस ने अपना तैयारा बरदार जहाज चार्ल्स डी गॉल तैनात किया है, जो 8 जहाज़ों और 2 हेलीकॉप्टर बरदार जहाज़ों के बेड़े की क़यादत करेगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
यूरोपीय मुल्कों ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले ऑपरेशन इपिक फ्यूरी से इस मिशन को इरादतन अलग रखा है, क्योंकि अमरीका इस जंग में बुनियादी फरीक है। लिहाजा यूरोप और खलीज की बहुत सी हुकूमतों ने अमरीकी हमलों में बराह रास्त शामिल होकर कोई खतरा मोल लेने के बजाय फ्रांस की क्यादत वाली इस कोशिश में शामिल होने का फैसला किया है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीकी बहरिया का जल्द ही अपना मुहाफिज निज़ाम होगा। उसने समुद्री तजारत के दौरान तजारती खतरे के लिए बीमे की पेश की है, अलबत्ता उसने इसके लिए किसी वक्त की तस्दीक नहीं की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराकी से तफसीली बातचीत की और मगरबी एशिया में जारी तनाजे की ताजा पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के राबते में रहने से इत्तेफाक किया है। अमरीका और इसराइल की मुश्तरका फौजों और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता महीने शुरू हुए तनाज़े के बाद से ये दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर तीसरी बातचीत है। डॉ जयशंकर ने जर्मनी के अपने हमनसब जोहान वेडेफुल्स और जनूबी कोरिया के वजीर खारजा शो ह्यून से भी मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शो ह्यून ने कहा कि उन्होंने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत की, जो आलमी सलामती और मईशत पर गहरा असर रखता है। जनाब चो ह्यून के मुताबिक वो बदलती सूरत हाल के दौरान भारतीय और जुनूबी कोरियाई शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले इकदाम के ताल्लुक से करीबी रबते में रहने पर मुत्तफिक हो गए हैं। جو ہیون نے امید ظاہر کی کہ فریقین کے درمیان اس سال ہونے والے اعلیٰ سطحی تبادلوں سے دو طرفہ رشتے نئی بلندی پر پہنچیں گے۔ جناب چو ہیون نے مزید کہا کہ ڈاکٹر جے شنکر اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ فریقین کو اسٹریٹجک اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے لیے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ شہری آبادی کی وزارت نے کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا خطے کے حالات واقعات اور ان کے بھارت اور مغربی ایشیا خطے کے درمیان ممکنہ سفری اثرات پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اپنے بیان میں وزارت نے کہا ہے کہ بدلتی صورتحال کے ردعمل کے طور پر ایئر لائنز مناسب کارروائی جاتی انتظامات کر رہی ہیں اور اس دوران مسافروں کی حفاظت اور خدمات کی فراہمی جاری رکھنا اولین ترجیحات بنی ہوئی ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ پیر کے روز کے کارروائی جاتی اعداد و شمار کے مطابق بھارتی کیریئرز کے ذریعے چلائی جانے والی 45 پروازوں کے ذریعے 7,400 مسافروں کو بھارت لایا گیا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ شہری آبادی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی سی اے اضافی آمد اور روانگی کے سلاٹس کو آسان بنانے اور مسقط بین الاقوامی ہوائی اڈے کا متبادل ہوائی اڈے کے طور پر استعمال کی اجازت حاصل کرنے کے لیے متعلقہ حکام سے تال میل کر رہی ہے۔ یہ انتظامات دبئی، ابوظہبی، شارجہ، راس الخیمہ، العین، فجیرہ، جدہ اور مدینہ جیسے مقامات پر آنے اور جانے والی پروازوں میں مدد کریں گے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او اور بھارتی بحریہ نے P-81 طیارے کے ذریعے فضا سے ہی گرائے جانے والے کنٹینر ADC-150 کو پرواز کے دوران فضا میں گرانے کی 4 مشترکہ کامیاب مشقیں انجام دی ہیں۔ ملکی میں تیار کیے گئے اس کنٹینر کی یہ مشقیں گوا کے ساحل سے کچھ دور 11 فروری سے 1 مارچ 2026 کے درمیان مختلف قسم کے انتہائی حالات میں انجام دی گئیں۔ فضا سے گرائے جانے والے اس کنٹینر میں 150 کلوگرام وزن لے جانے کی صلاحیت ہے، جس سے کسی پریشانی میں مبتلا بحری جہاز کو فوری مدد پہنچانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس کنٹینر کے ذریعے ساحل سے کافی دور سمندر میں اہم ساز و سامان اور طبی امداد پہنچائی جا سکے گی۔ جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں کل بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پہل کے تحت کوٹرنکا اور امنگوں بھرے بلاک خواص میں طالبات کے لیے مفت کوچنگ کلاسز کا افتتاح کیا گیا۔ اس کے تحت دونوں بلاکس میں قائم کیے گئے 14 کوچنگ مراکز میں کلاسز کا انعقاد کیا جائے گا۔ خواتین کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ 2026 کوالیفائرز میں آج حیدرآباد میں پول بی کے فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کا مقابلہ ویلز سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم کا ویلز کے خلاف بہترین ریکارڈ رہا ہے، جہاں اس نے اب تک ویلز کے ساتھ کھیلے گئے میچوں میں 1-5 سے سبقت حاصل کی ہے۔ بھارت فی الحال اپنے 4 پوائنٹس اور گول کے مضبوط فرق کی بدولت پوائنٹس ٹیبل میں سب سے اوپر ہے۔ پول کی سر فہرست 2 ٹیمیں کوالیفائی کریں گی۔ اگر بھارتی ٹیم اس مقابلے میں جیت حاصل کرتی ہے یا میچ ڈرا ہوتا ہے تب بھی وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی۔ سوئس اوپن بیڈمنٹن 2026 میں ایچ ایس پرنوئے اور کدامبی سری کانت آج مردوں کے سنگلز میں بھارتی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ میچ آج شام کھیلے جائیں گے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔
شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والی آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات تھے۔ وزیر اعظم کے کیرلا اور تمل ناڈو کے دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی آج کیرلا اور تمل ناڈو کا دورہ کریں گے اور 16,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ روزنامہ پرتاپ نے ایک اہم خبر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، ووٹر فہرست میں بے ضابطگیاں صرف بنگال میں نہیں بلکہ 12 دیگر ریاستوں میں بھی پائی گئیں، اعلی انتخابی کمشنر کا بیان۔ روزنامہ انقلاب نے این سی ای آر ٹی سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے، اس نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگی۔ نصابی کتاب میں عدلیہ میں بدعنوانی سے متعلق باب شامل کیے جانے کا معاملہ، اسی اخبار نے ایک اور سرخی لگائی ہے، گجرات، مہاراشٹر اور راجستھان کے 14 شہروں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔
اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کیرلم اور تمل ناڈو میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے جن کی لاگت 16,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ اسپیکر اوم برلا کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے سے متعلق قرارداد پر آج لوک سبھا میں مزید مباحثہ ہوگا۔ آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کے گزرنے میں رکاوٹ آ گئی ہے، مغربی ایشیا کی جنگ کا یہ دوسرا ہفتہ ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا جنگ کے سلسلے میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے بات چیت کی ہے۔ اور خواتین کے ایف آئی ایچ ہاکی کے 2026 عالمی کپ کے کوالیفائرز میں فائنل پول بی کے تحت بھارت کا مقابلہ آج ویلز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔